गुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्मि। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमः। यां प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहां पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमाम्। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्मन नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद कृष्ण भक्ति प्रज्ञान के सबुस्वामी महाराज के चरणों में सतकोटि दंडक प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सज्जन मंडली, वैष्णव बृंद सज्जन मंडली, माताएं बहनें और कन्याएं, यथा योग्य सबके लिए अब मेरा आचार। मैं आज श्रीमद् भागवत प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न मेरे सामने आया है। मैं यहाँ तक शास्त्रों का विचार है, उस दृष्टि से उसका उत्तर मैं देने की चेष्टा करता हूँ। यह महाराज जी, हमारे देश में छोटी छोटी कई समस्याएं हैं, मगर उनमें से दो प्रमुख रूप हैं। आपसे आग्रह है कि आप इन दोनों को प्रमाण सहित सुलझाने की कृपा करें। यहाँ पर प्रचार किया जाता है कि जो चार वर्ण के लोग हैं उन्हें भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, और उदाहरण स्वरूप अगर एक ब्राह्मण का पुत्र हो तो वह पूजनीय है, चाहे वह मांस मक्स और शराब शराब सबका भक्षण करता है, ऐसा प्रचार किया जाता है। ऐसा भी प्रचार किया जाता है कि केवल एक ब्राह्मण कुल ही धर्म ग्रंथों का प्रचार कर सकता है पहले, और फिर महाभारत भागवत महापुराण के प्रचार से हमें यह मालूम हुआ है कि चार वर्ण केवल कर्म के अनुसार में ही स्थापित किए गए हैं। अगर रामायण के इस चौपाई के द्वारा पूजी ब्राह्म विप्र ज्ञान गुण ही न शूद्र न पूजे ज्ञान गुण, तो इसके संबंध में शास्त्र में जो कहा गया है इसके समुचित उसका उससे उत्तर देकर के मीमांसा करने की चेष्टा करूंगा, और इसके बाद में श्रीमद् भागवत का हम बहुत ही सुंदर प्रवचन हम लोग उस पर करेंगे। इस विषय में हमारा ये कहना है कि सबसे पहले गीता सर्वमान्य पुस्तक है, सब विषयों की मीमांसा करने वाली है, और उसके वक्ता स्वयं कृष्ण है, इसलिए इसमें किसी बात की संदेह नहीं होना चाहिए। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग कृष्ण स्वयं कहते हैं ये चारों वर्ण मेरे द्वारा किए गए हैं। कैसे? गुण और कर्मों के विभाग से, जो जैसा व्यक्ति है उसके गुण के अनुसार में देख करके और स्वभाव को देख करके ये सब मेरे द्वारा बना। पहले आप लोग इस चीज को समझें, सतयुग तक कोई जाति नहीं थी, बस एक परमहंस जाति थी, ब्राह्मण जाति थी, कि ब्रह्म से सभी ब्राह्मण ही उत्पन्न है, इसे एक जाति थी, दो कोई जाति नहीं थी। उसमें दो विभाग था, सूर और असुर, दो होते लोक सर्गे लोक दैव आसुरे वच दैव आसुर च विष्णु भवेत भक्तो भवेत दैव आसुर सद्विपत्य। जो लोग भगवान को मानते थे वो लोग देवता ऋषि ब्राह्मण कहलाते थे हंस जाति के, और बाकी लोग जो भगवान का विरोध करते थे उनको असुर कहा जाता था। किंचित त्रेता युग आने तक हमारे ऋषियों महर्षियों ने भगवान के निर्देश से, वेदों के निर्देश से वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर लोक समाज का कल्याण करने के लिए इनको गुण और स्वभाव के अनुसार, जैसा भगवान ने गीता में कहा है, चार भागों में विभाग कर दिया। जो लोग ब्रह्म तत्व को जानने वाले थे, जिनमें दया होती थी, सात्विक प्राकृतिक के लोग होते थे, वेद शास्त्रों का अध्ययन करते थे, वैसा अपना जीवन चलाते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। जो सूरवीर थे, देश की रक्षा करते थे, राष्ट्र की रक्षा करते थे और अपने धर्म की रक्षा करते थे, उनको क्षत्रिय। और वैश्य जो अर्थ सहायता से सबकी सेवा करता था और इसके पर्ण के बहिर्भूत जो होते थे वो लोग, ये चार तरह से थे। इसलिए श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, जस्य जलक्षणम प्रोक्तो पुंसा वर्णाभिगंजकम जदन्यासित दृश्यते तत्र नैव विनिर्दिशे। ये चार गुण जो हमने कहा ब्राह्मण वैश्य शूद्र के, इसमें यदि चारों वर्णों में से ब्राह्मण का स्वभाव जिनमें हो, सदाचार संपन्न, भगवत चिंतन करने वाले हों और उनमें विद्या अध्ययन इत्यादि का ज्ञान, जिसमें गुण हो, सदाचारी हो, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों को ब्राह्मण कहा गया। ये यदि गुण यदि दूसरी जगह भी देखे जाए, अर्थात जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र में भी ये गुण यदि देखे जाए तो उनको ब्राह्मण ही मानो। कैसे मानो? एक लड़का था, त्रेता युग की बात है, वो विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु के पास में गया। उसके गुरु का नाम था गौतम, हरिश्रुति गौतम, ब्रह्मवादी ब्राह्मण ऋषि थे, तत्ववेत्ता, वेदों को जानने वाले। तो उस ऋषि ने उस बालक से पूछा, बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है? गोत्र माने पिता के अनुसार में गोत्र होता है। तो वो बोला, जैसे मैं तो नहीं जानता, जाओ पूछाओ मैया से। तो मैया से गया, पूछा और पूछ करके फिर आया, पूछाया तो हाँ, तो तुम्हारा गोत्र क्या है बतलाओ। तो उसने कहा कि देखो, हमारी मैया का नाम है जाबाला, मैं उसका पुत्र हूँ सत्यकाम। युवावस्था में वो बेस्या थी, मैं बेस्या थी, और किससे तुम पैदा हुआ ये मैं नहीं जानती, इसलिए ऋषि से यही कहना कि मैं अपनी मैया जाबाला का पुत्र हूँ। और जो अवस्था में उन्होंने कैसे हमको, किससे पेट हमारा धारण किया हमें, मुझे मालूम नहीं, इसलिए आप मुझे जाबाला सत्यकाम समझें। इस बात को सुनकर के ब्राह्मण जी जो गौतम थे बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा सच बात दूसरा ब्राह्मण के अतिरिक्त नहीं कर सकता, इसे सतर्कवादिता, ये है ब्राह्मणों का लक्षण स्वभाव का, इसे तुम जरूर ब्राह्मण बालक है। मैं तुम्हें ये उपनयन देकर के अभी वेद अध्ययन कराता हूँ। उन्होंने साथी साथों से वेद अध्ययन कराया और वो ब्राह्मणों में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मर्षि वो तत्व क्या का हुआ। कहते हैं महाभारत में बहुत से इसके प्रमाण है। कहते हैं शूद्रो अपि सामाज्युपेतो ब्राह्मणेत ब्राह्मणेव ब्राह्मणों अपि कामाद्युपेत शूद्रेव। यदि शूद्र पिता और माता के कुल में जन्मा यदि कोई व्यक्ति हो किंतु उसमें ब्राह्मणों के गुण हैं, साम दम तितिक्षा आर्जव उदारता ब्रह्म तत्व को जानने की पिपासा सबके साथ में मधुर व्यवहार झूठ नहीं बोलना, तो उसको ब्राह्मण निश्चित ही समझो। और ब्राह्मण में भी यदि ये काम आदि हिंसा प्राण का इत्यादि हो तो उसे ब्राह्मण नहीं कहेंगे। जैसे रावण के पिता का नाम था, पितामह का नाम था पुलस्त्य ऋषि, उनके पुत्र थे विश्रवा मुनि ब्राह्मण, और उनका पुत्र ये रावण, किंतु उसको राक्षस कहा, शूद्र से भी अधिक। यदि शूद्र का, यदि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण कहा जाता है तो ये मांस मछली सभी कहता था, क्यों नहीं तुलसीदास जी जैसे व्यक्ति ने उसे आदर दिया, या हमारे वाल्मीकि जी ने उसे ब्राह्मण क्यों नहीं माना। महाभारत श्रीमद भागवत भी ऐसा उसे कहा गया, जगत को रुणालय माना होने से उसका रावण हुआ, मध्य मांस सब खाता था, सीता जी का हरण करके ले आया, इसलिए वो ब्राह्मण नहीं हुआ, उसको राक्षस कहा, कहीं भी ब्राह्मण नहीं रह गया। यदि कहो विभीषण जी में तो ये सब गुण थे, उन लोगों का संस्कार नहीं था, किंतु वो भगवत भक्ति होने के कारण ब्राह्मणों से भी बहुत ऊंचे हैं। जिन लोगों में भगवत भक्ति है, भगवान का भजन करते हैं, वो लोग बहुत उससे ऊपर हैं। कहते हैं महाभारत में कहा गया कि मृगी थी हरिणी, उसे ऋषि श्रृंग पैदा हुए, हिरणी से पैदा हुए, वो ऋषि श्रृंग थे। महाराज दशरथ के यज्ञ में वो आए, पुत्रेष्टि यज्ञ में उन्होंने यज्ञ कराया और उनको ब्राह्मण माना गया। ब्राह्मणों में भी कैसा बहुत उच्च कोटि का, तो ये कौन से जाति में रहे, ये ब्राह्मण माने गए सिंगी के ब्रिगी से, और उससे कौशिक हुए। कौशिक, इस कौशिक के पुत्र ही हमारे विश्वामित्र जी हैं। तो ये तो कुश से पैदा हुए, तो इनकी क्या जाति रहेगी। और वाल्मीकि जी थोड़ा, ये वाल्मीकि माने होता है दीमक होता है, उससे पैदा हुए, तो वो रामायण का लेखा, और वो ब्राह्मणों में परम उत्तम ब्रह्मर्षि भी माने गए। ये कैसे संभव हुआ, अरे मछुआरे की बेटी से व्यास का जन्म हुआ। व्यास का जन्म जानते हैं, मछुआरे की कन्या से, मछुआर माने मछली मारने वाला, और उसे ये पैदा हुई व्यास जी, और वेश्या से पैदा वेश्या वर्षी, उसे वशिष्ठ जी पैदा हुए जो रामचंद्र जी के उनके वंश के पुरोहित थे। ये कैसे संभव हो गया। और कुंभ से, घड़े से तो अगस्त जी पैदा हुए। इनकी कौन सी जाति मानी जाएगी जो इनको ब्राह्मण कहा गया, इसलिए ब्रह्म जाना आती थी ब्राह्मण, ब्रह्म तत्व को जो जानने वाला वो ब्राह्मण है। इसलिए कहते हैं जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र हैं, सब लोग शूद्र ही जन्मा होते हैं है? और संस्कारात द्विजोच्यते, संस्कार से वो ब्राह्मण बनते हैं। गायत्री इत्यादि के द्वारा, उपवीत इत्यादि के द्वारा संस्कार देने पर वो क्या कहलाता है, तीज माने दूसरा जन्म, द्विज दूसरा जन्म, माता पिता से शुक्र जन्म होता है, उसमें सभी शूद्र होते हैं। ब्राह्मणों का संस्कार हो तो वो भी शूद्र ही है, पीछे से उनका स्वभाव और विचार देख करके उनको माना जाता है ये ब्राह्मण है या कैसे हैं। और वेद पाठात भवेत विप्र, वेदों का संस्कार होने के बाद में वेदों का जो पाठ करते हैं उनको कहते हैं विप्र। और ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले, जो जगत की सृष्टि करने वाले जो पर ब्रह्म है, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तब तो सिद्धार्थ जी ने वो जो कहा यदि विप्र यदि है पूजीय विप्र, ज्ञान गुण ही ना, विप्र माने जो पहले जो मैंने कहा उसका जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, और उसका द्वितीय संस्कार भी हुआ, गायत्री मंत्र को पाया, किंतु ब्रह्म जानने वाला ये गुण उसमें नहीं है, फिर भी उसको आदर करना चाहिए, क्यों, संस्कार हुआ है, गायत्री का प्रवचन, गायत्री का जप करता है, और ब्राह्मणोचित गुण है, किंतु अभी ब्रह्म को अभी जान नहीं सका, अभी उसके लिए साधक बना है। ऐसे लोगों को भी आदर करने के गुण क्या, वो गुण ब्रह्म को जानाती, इसलिए तुलसीदास जी ने ठीक कहा है, इनको समझना चाहिए। तुलसीदास जी की बातों को समझना सहज नहीं, बहुत गंभीर बात करते हैं। दूसरी बात, एक ही महाराज थे, उनका नाम था ऋषभ, क्षत्रिय थे महाराज, क्षत्रिय श्रीमद भागवती दास। तो उस ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जिसमें बड़े का नाम भरत था, जिसके नाम से यह भारतवर्ष हुआ। वो भारतवर्ष के इस राजा थे, इसलिए उनका नाम पड़ा भारत। बड़े गुणी थे, परम भगवत भक्त थे, इनकी कथाएं हम लोग आपको सुनाएंगे। तो ये भरत जी ये क्षत्रिय हुए, और नौ उनके जो छोटे जो भाई थे ये नौ जोगेंद्र हुए। परमहंस जाति पाति से ऊंचा, बहुत ऊंचे, ब्रह्म ज्ञान से दीप्त, इनकी कोई जाति नहीं, परमहंस। और एकासी कर्म कांडीय ब्राह्मण हुए और नौ नौ वर्षों के क्षत्रिय राजा बने। तो ये कैसा, ये पिता के ही बहुत से हो गए, ये जातियां भिन्न भिन्न, इनको भी समझना चाहिए, ये गुण और कर्म के अनुसार में हुए। महाराज आप विश्वामित्र को जानते हैं, ये ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए, ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए बहुत तपस्या की, वशिष्ठ जी ने अंत तक नहीं उनको ग्रहण किया, अंत में जब उसके योग्य हुए तो उनको ब्रह्मर्षि कहा गया। इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो कि दूसरी दूसरी जातियों से भी, जैसे कि व्यास जी को कहा, नारद जी कौन से जाति के थे, एक शूद्रानी के गर्भ से जन्मने वाले, और बतलाइए ब्राह्मणों के भी वाल्मीकि और व्यास और सबके भी गुरु, इसलिए इस प्रकार से पहले विचार किया जाता था। कहते हैं न जात्या ब्राह्मणश्च क्षत्रियो वैश्य एव न च न शूद्रो न च वैश्य म्लेच्छ भेदिता गुणों कारण। न जात्या, जाति से ही उसका पिता ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इससे जाति का निरूपण नहीं होता, केवल कौन जन कुल में जन्मा, पिता माता का विचार, पूर्व जन्मों का संस्कार, उसमें कर्मों का कैसा है, उसके लोगों के साथ में कैसा है, उसका स्वभाव कैसे उदित हुआ, ये सब को विचार करके तब जाति का निरूपण होता था। आजकल जैसा नहीं, आज जूते का कारोबार करते हैं, मदिरापान करते हैं, मांस मछली भक्षण करते हैं, ये लोग कभी भी ब्राह्मण नहीं कहा जाता, कदापि नहीं। समस्त शास्त्र एक पद से इसका अनुमोदन करते हैं, इसलिए गुण होना चाहिए। डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर ही नहीं होगा यदि वो वकालत करता है तो डॉक्टर नहीं होगा, और वकील का लड़का यदि बिजनेस करता है तो वकील नहीं कहा जाएगा। इसलिए गुण कर्म का अनुसार में सब, यदि ये सब चीजें होती हैं तो क्यों नहीं हमारे यहां पर भी होगा। यदि जाति को ही ब्राह्मण माना जाए तो मरने के बाद में लोग उसको जो जलाते हैं उनको ब्रह्म हत्या का पाप क्यों नहीं लगता, यदि शरीर ही जाति है तो, यह बात ठीक नहीं। यदि कहो ये आत्मा जाति है, आत्मा भी जाति नहीं है, आत्मा का भी नहीं, वो तो सभी भगवान के अंश हैं और भगवान के नित्य सेवक हैं, इसलिए जातियां हमारे कल्याण के लिए, सनातन धर्म के उन्नति के लिए, उनको सुखी बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए, जिससे कि हम लोग क्रमशः धीरे 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 भगवान की तरफ में बढ़ें, इस तरह से। नहीं तो जात जन्म से सभी शुद्र हैं। एतद् जो वा एतद् अकर्म गार्गी विदित्वात्मान लोकात् प्रैति स ब्राह्मण। एक समय महाराज जनक के दरबार में बड़ी भीड़ लगी थी, बड़े बड़े वक्ता लोग वहां पर आए, तो वहां पर एक समय महाराज जनक ने हजारों लाखों गायों को सोने के चादरों से उड़ा दिया, सोने की सिंह लगा दिया और खुर लगा दी, और कहा जी जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो ब्राह्मण है उसको ले जाए, मैं उनको देता हूं, इसलिए आप लोग निर्णय करें ये ब्राह्मण कौन है। सब लोग चुपचाप बैठे, सभा शांत रही। वहां पर याज्ञवल्क्य जी थे, कहा देखो महाराज जनक जी, जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है उनके चरणों की धूली हमारे सिर पर, मैं तो उनको प्रणाम करता हूं, किंतु फिर भी मैं कहता हूं बटू बटू, मैंने गाय को हाँक करके हमारे आश्रम में ले चलो। जब हाँक करके ले जाने लगा वो, तो जितने ब्राह्मण बैठे थे बोले तुम कैसे ब्राह्मण हो, प्रमाण दो, और प्रश्न करने लगे। उन्होंने कहा जी देखो सीधी तरह से प्रश्न करो तब तक उत्तर दूंगा, और यदि उल्टा इधर उधर का प्रश्न किया तुम्हारा सिर उड़ जाएगा, ये समझ रखो, समझ बूझ करके प्रश्न करो। सबकी बोली बंद हो गई, कोई नहीं पूछ सका। उस समय एक गार्गी नाम की महिला थी, विदुषी, बड़ी वेदों को शास्त्रों को जानने वाली, उसने कहा हमारा एक प्रश्न है, कौन शूद्र है और कौन ब्राह्मण है इसका उत्तर दे दीजिए, और फिर उत्तर देकर के तब गायों को लेकर के हाथ जाइए। तो बड़े प्रसन्न हुए और बोले, जो वा एतद अखरम गार्गी अविद्या अविद्या आसमान लोकात् प्रैति स शूद्र, जो इस ब्रह्म तत्व को जान करके आत्मा को जान करके इस जगत से चला जाता है वही ब्राह्मण है, और जो नहीं जानता वो शूद्र है, जो शरीर के लिए शोक करता है वो शूद्र है। दोनों का उत्तर सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और गाय को लेकर के चले गए। इसके द्वारा भी यही प्रमाणित होता है, स्वपचोपी महिमा महिपाल विष्णु भक्तो दिजादिका विष्णु भक्ति ही नीजो अपनी सपचार श्रीमद्भागवत में है स्वपचो अपनी महिपाल। यदि चंडाल का भी पुत्र कोई हो और विष्णु की भक्ति हो तो वो ब्राह्मण से बहुत उत्तम है, उत्तम है। जिस ब्राह्मण को भक्ति नहीं है, सब गुण संपन्न होने पर भी जिसमें भगवत भक्ति नहीं है वो ब्राह्मण कदापि नहीं कहा जा सकता। और किसी कुल में भी जन्म हो, जैसे नारद जी हैं, व्यास जी हैं, सिंह ऋषि हैं, गौतम हैं और सब जो बतलाया हमने, ब्रह्म तत्व को जानते हैं, भगवान की भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो वो ब्राह्मणों में भी पूज्य हैं। इस तरह से यह प्रमाणित होता है। आजकल कुछ ऐसा प्रचार हो रहा है किंतु वो शास्त्रों के विचार से ठीक नहीं है। उसमें गुण होना चाहिए और उनका आदर भी होना चाहिए। यदि जन्म से ही ऐसा होता तो भगवान ने सिंह थे तो खंभे से निकले थे, उनकी कौन सी जाति ली जाएगी, कौन सी जाति। और कृष्ण तो गोकुल में आए थे, ब्राह्मण लोग उनका जूठा क्यों खाते हैं भोग दगा करके। रामचंद्र जी तो क्षत्रिय थे, बराह जी तो सुअर रूप में आए थे, उनको तो लोग भोग दे करके खाते हैं। इसलिए ये सब विचार कर करके तब हम लोग चलना चाहिए। गुणों का आदर होना चाहिए, जहां जहां पर भी कोई भक्त हो उसको आदरणीय है। जो तत्व को जानता है वो ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण इत्यादि गुणों से ही है कदापि इसका अधिकारी नहीं है। किंतु ब्राह्मण लोगों का आदर होना चाहिए, यदि उसमें गुण है तो उनका निरादर खबरदार मत करो, थोड़ा सा भी गुण है उनका आदर करो, ये हमारी भारतीय की रीति है। दूसरी बात, एक प्रश्न ये पूजा पाठ के अवसर पर पत्नी को अपने पति के किस अंग में बैठना चाहिए, एक प्रश्न ये किया। पत्नी पूजा के समय में अपने पति के किस अंग में बाएं तरफ बैठेगी या दाहिने के तरफ में। भाई हम लोग तो सन्यासी हैं, हमें याद भी नहीं और इस पर हम लोग विचार भी नहीं करते, तभी शास्त्रों में जो लिखा है हम उस पर विचार करके आप लोगों को। समाज के वर्तमान पोजीशन से कुछ इसमें इधर उधर हो सकता है, विशेष करके यदि भक्ति है तो इसमें कोई दोष नहीं होता इधर उधर बैठने से। तभी हमारे शास्त्रों में हमने देखा जो ये विचार दिया, भगवान रामचंद्र जी के लिए रामचरितमानस में नीलांबुज श्यामल कोमल अंगम सीता समारोपित वाम भागम, मैं सीता और राम को प्रणाम करता हूँ, जो राम के बाएं के तरफ में सीता जी बैठे हैं और राम उस राम को कमल लोचन जो श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ, ये वाम भाग में आया। यहाँ पर दक्षिण भाग तो नहीं लिखा है। फिर दूसरी जगह में मानस चौपाई में मानस में भी कहते हैं दक्षिणे लक्ष्मण, दक्षिण में रामचंद्र जी के दक्षिण में दाहिने ओर हैं लक्ष्मण जी, बाम तो जानकी सुभा, और बाएं तरफ में कौन है जानकी सुभा, परम मंगलमयी माता जानकी जी हैं, पुरुषो मारुति और सामने में मारुति जी अर्थात हनुमान जी उन दोनों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे रघुकुल तिलक है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर भी बाम अंग में ही बैठने का कहा गया। बाम भाग सो हति अनुकूला आदि सप्त छवि निधि जगमूला, जबकि मूल समस्त लक्ष्मा ब्रह्मी लक्ष्मा रमा और उमा को लाखों लाखों को प्रकट करने वाली जो आदि शक्ति श्रीमती राधिका जी हैं, बाम भाग सोहति अनुकूला बड़ी सुंदर रूप से वहां पर सुशोभित हो रही है। बाएं अंग में यहां पर भी आया, जिसमें रामचंद्र जी का सीता के साथ में विवाह हो रहा था उस समय पूजा हो रही थी, उस समय जनक जी के बाएं तरफ में सुनैना जी बैठी थी। उस समय में पितरों का पूजन और हवन इत्यादि कार्य और अपनी पत्नी का पानी ग्रहण कराएंगी, ये पूजा का समय है। तो उस पूजा समय के लिए तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, जनक बाम दिश सोह सुनैना, पूजा करते समय जनक जी के बाएं तरफ में सुनैना जी शोभित रही हैं। कैसे? जैसे उमा जी के विवाह के समय में हिमगिरी संगवती जनु मैना, जिसमें हिमाचल जी अपनी पत्नी मैना उनके बाएं तरफ में बैठी हैं और विवाह का पूजा का सारा संस्कार करा करके शंकर के हाथों में पार्वती जी का पानी ग्रहण करा रही हैं, वैसे ही यहाँ पर महाराज जनक के बाम भाग में सुनैना जी बैठ करके समस्त पूजा का आयोजन सब पूरा करके और तब राम के हाथों में पानी ग्रहण कराया। इसे भी ऐसा पता चलता है। किंतु कुछ लोग ऐसा करते हैं, दाहिने तरफ में पूजा के समय बैठाते हैं, तो मैंने ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा। यदि कहीं समाज की ऐसी रीति है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना समाज के नियम के अनुसार में चले, किंतु शास्त्र ये कहते हैं और शास्त्र का विचार ऐसा है। अब ऐसा देख करके हमारे इसमें किधर बैठाओ, यदि भगवत भक्ति हो तो किधर भी बैठो। और एक बात याद और आती है, शंकर जी ने जब सती का त्याग किया तो बाम भाग में बैठाते थे, सब समय में उनको सामने आसन दिया माता का, फिर बाएं तरफ ने कभी नहीं बैठाया और इसीलिए सती जी वो आग में जल मरी। इसलिए इसके अतिरिक्त भी आप लोगों के पास में कुछ जैसे यज्ञवल्क्य स्मृति है, मनुस्मृति है और 18 स्मृतियां हैं, उनमें आप लोग देखेंगे। पहले हम देखते थे, अब उस सब कुछ देखना छोड़ दिया, अब तो हम केवल भगवत भक्ति में, राधा कृष्ण की भक्ति में हम रमते हैं। इन प्रश्नों को आपने कहा था, इसलिए मैंने संक्षेप में जैसा शास्त्रों का विचार मैं आपसे निवेदन, हमारा किसी में हट नहीं है, शास्त्रों का विचार आदमी ग्रहण करे तो अच्छा है। अब मैं अपने विचारों पर आता हूँ, श्रीमद् भागवत के श्रीमद् भागवत में पहले ही बतलाया गया, श्री सुको वाच, ये महाराज परीक्षित बड़े विद्वान थे, बहुत बुद्धिमान थे, भगवान की गोदी में खेले थे। जब कृष्ण जिस समय थे, उस समय जिस समय इनका जन्म हुआ, माता के गर्भ में थे, जबकि अश्वत्थामा ने बाण मारा तो उनके गर्भ में प्रवेश करके उनको जला रहा था। उस समय भगवान उसके भीतर में प्रवेश करके और उसकी रक्षा की। वो सप्तम देवता, यही भगवान तो नहीं जिन्होंने हमको हमारी रक्षा की थी, इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित, परीक्षा करते थे। एक समय में वो कहीं अपने राज्य में विचरण कर रहे थे। अब विचरण करते 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 उनको दोपहर का समय हो गया, बड़ी जोर से प्यास लगी, पानी कहीं नहीं मिला। पानी से छटपट करते हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे अपने ही राज्य में और उसे पानी मांगा, किंतु वो ध्यान में मग्न था, समाधि में लगी, उसे शरीर का होश नहीं, भगवत चित्त, अपने चित्त को भगवान में लगा दिया था। उस समय में उनके पानी मांगने पर, बार बार भी मांगने पर बेचारे वो अपने आसन से उठ करके पानी नहीं दिया। उन्होंने कहा, ओ जैसे आज लोगों का विचार है, पानी नहीं पिलाता है कोई, अस्पताल नहीं बनाता, स्कूल नहीं बनाता, रोगियों की सेवा नहीं करता, तो ये कैसा धार्मिक है। इसलिए परीक्षित महाराज ने सोचा उस समय में, ये शायद हमको देख करके ये चुप हो गया और समाधि लगा लिया, हमसे बोलना नहीं चाहता है, हमारा निरादर कर रहा। यद्यपि बात तो थी नहीं ऐसी, किंतु उन्होंने ऐसा ही लोगों के अनुसार में सोचा, ऐसा लोग समझते हैं, और इसलिए देखा जे नहीं करते, अच्छा तो इनको उपहार देना चाहिए। एक मरे हुए सांप को अपने धनुष से उठा उसने गले में लगा दिया 3 बार लेकर के और चले अपने आश्रम को। तो अपने घर पर फिर सोचा, ओहो मैंने ये गलत किया या ठीक किया, जब ये सचमुच में ये समाधि में हो तब तो मैंने बहुत बुरा काम किया, तब तो न जाने हमको कौन सा दंड मिलेगा, और यदि सचमुच में ना हो तो कोई बात ही नहीं। ऐसे ही सोचते जा रहे थे, इतने में उनका लड़के ने सुना कि हमारे पिताजी के गले में किसी ने सांप लगा दिया। सुनकर के बड़ा वो क्रोधित हो गया। 5 वर्ष का लड़का नंगा बच्चों के साथ में एक नदी के तट पर वो घूम रहा था, जैसे ही सुना बड़ा क्रोधित हो गया वो बच्चा, और उठाया पानी और आचमन करके और कुछ चिंतन करके मंत्र पढ़ करके कहा, जिसने हमारे पिता का ये अपमान किया है वो मालूम होता है कि राजा परीक्षित है। आज हम जो हम अपने यज्ञ के लिए जिनको अपना रक्षक बना करके पहरादार बनाया था वो पहरादार कुत्ते आज हमारे यज्ञशाला में घुसकर हमारी बिना इच्छा के हमारी इच्छा के विपरीत हमारी यज्ञशाला के चीजों को खा रहे हैं। मैं अभी उनको दंड दूंगा। समझ रहे नहीं इसका अर्थ? हमने यज्ञशाला के रक्षा करने के लिए अपने धर्म की रक्षा के लिए हम लोग निश्चिंत होकर के करेंगे इनको अपना प्रहरी नियुक्त किया था। हमारा शासन करने वाले ये लोग नहीं है, क्षत्रिय लोग, हमने इनको दिया है ये सब शासन करने का अधिकार, और आज हमारी यज्ञशाला में प्रवेश करके हम ब्राह्मणों के ऊपर में ये शासन कर रहे हैं, उनको शासन देने वाले हैं, मैं आज उनको अच्छी तरह से शिक्षा दूंगा। ऐसा करके पानी लेकर के प्रोक्षण कर दिए, जाओ जिसने ये ऐसा किया वो 7 दिन में यही सांप या कोई तक्षक सांप उसे डसेगा और मर जाएगा, कोई रक्षा नहीं करेगा। आकर के पिताजी की गोदी में बैठ गया और रोने लगा। पिताजी की का समाधि भग्न हुआ। उन्होंने कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है? है रो रहा है बतलाओ तो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे गले में सांप किसी ने डाल दिया? अच्छा सांप डाल दिया, देखा तो कौन डाला? ओ महाराज परीक्षित प्यास से भूखे आए, प्यास से भूखे और उससे पानी मांगा मैं नहीं दे सका। उस समय कुछ बच्चे चंचल उनका था इसलिए सम्मान है, बड़े धार्मिक राजा तो हैं। अरे बेटा तुम इतना ब्राह्मण का गुण तुम में नहीं, सहिष्णु नहीं, तुमने इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, क्रोध में उनको अभी संपात कर दिया, तुम्हें सहिष्णुता तक नहीं है, तुम ब्राह्मण होने योग्य नहीं, ऐसा अभी संपात कर दिया। फिर बोले अपने दूसरे को बटु को अपने छात्र को कहा, जाओ महाराज परीक्षित को कहा वो जो होनी है सो तो हो ही गई। क्या क्या तर्क बढ़ा उन्हें चाखा, खैर जो होनी थी तो हो गया, वो तो ब्राह्मण थे, उन्होंने साथ साथ में उनको भेजा, जाओ कहो कि साथ में दोनों उनको पर ये सब डसेगा इसलिए जो कुछ करना है वो तैयार हो जाए।
राम
होई राम रची राखा को कर तर्क बढ़ा वही साखा। बस उन्होंने उनको कह दिया। वो जाकर के महाराज परीक्षित अभी रास्ते में जा रहे थे, कहा महाराज परीक्षित हमारे गुरुजी ने ये आदेश दिया कि 7वें दिन आपको पक्ष काटेगा सांप, कोई रक्षा नहीं करेगा, उनके बेटे ने ऐसा भी संपाद दिया जिससे आपका कल्याण जिसमें वो कीजिए। साथ ही साथ बड़े प्रसन्न हो जी हमारा कोई अनिष्ट नहीं हुआ, शरीर तो आज न कल अपने आप जाएगा, मैं नरक में नहीं गया, मेरा कुछ भी आत्मा की हानि नहीं हुई, मैं बहुत दुनिया से सोचता था ये इस राज्य पाठ को छोड़ करके भगवान का भजन करूंगा किंतु समय नहीं आ रहा था, आज मेरा समय आ गया, ये हमारे लिए वरदान है। ऐसा सोच सोच के बड़े प्रसन्न हुए और घर नहीं गए, वहीं से बेटे को राज्य भी नहीं दिया, ऐसे ही वहां से राजपाट सब छोड़ करके मुकुट को और धनुष को सब को त्याग दिया, राजवेश भी त्याग कर दिया और गंगा के समीप वहां पर आकर के गंगा जी के सामने बैठ करके और प्रायोपवेशन में बैठ गए। प्रायोपवेशन मैंने क्या, भूख प्यार छोड़ दिया, भूख खाना पीना और छोड़ करके बैठ गए और चिंतन करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ में हजारों ऋषि लोग वहां पर उपस्थित हो गए, 88,000 से अधिक ऋषि महर्षि, न जाने कश्यप ऋषि, कश्यप कस्पियंसी से, और कोई मंगोलिया से मंगल ऋषि, और कोई कहां से सभी लोग कैसे उसमें में पहुंच गए एक सेकेंड के अंदर में, जब बेतार तार कुछ भी नहीं था। कितना उन्नत हमारा भारत का उस समय साइंस था, हम लोग उसे विचित हो पड़े। हमारा वही गौरव हमें फिर लेना है, ये भगवत भजन से होगा और किसी चीज से नहीं होगा। बस ऋषि लोग आ गए, महाराज परीक्षित जी ने देखा जे सुखदेव गोस्वामी आए हैं, उनको राज वहां पर व्यास गद्दी पर बैठा है और पूछा हमारा कल्याण कैसे होगा, जिसकी आज ही मृत्यु है जरूर मरेगा, उसको क्या करना चाहिए, और जो आज न कल न बरसों न परसों न 1000 वर्ष के बाद मरेगा जरूर, उनके लिए क्या कर्तव्य, ये दो प्रधान प्रश्न। उस समय में सुखदेव गोस्वामी जी, सुखदेव उवाच, सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर दे। अब इसका तात्पर्य मैं पीछे बतलाता हूं, एक कीर्तन कर दो। एक प्रसंग है कपिल और देवहूति उनकी मैया का संवाद, साधारण जीवों के लिए और कल्याणकामी जीवों के लिए जो कल्याण चाहते हैं, इसमें बहुत सी शिक्षाएं हैं, उसको श्रवण करना चाहिए। उसमें जीवों का क्या कर्तव्य है, जीव है क्या चीज, इस सब का विशद रूप से वर्णन किया गया है। श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी जी संक्षेप में इसके 7 तत्वों को आप लोगों के सामने वर्णन करेंगे, इसके बाद में मैं सियास्तु का इसके संबंध में मैं कुछ आप लोगों के सामने निवेदन करूंगा। इसको परम सत्य मानेंगे और ऐसे ही आचरण करने की चेष्टा करेंगे। ये मत समझिए कि मृत्यु के समय में जम के झूठ आते हैं, ये झूठ बात है, परम सत्य बात है। भगवान की कृपा से आप लोगों को याद नहीं रहती पहले जन्म की, या जन्म में जो कष्ट होता है आपको याद नहीं रहती, वो तो जाति स्मर भक्ति थे उनको याद थी, हम लोग भूल जाते हैं, किंतु यह परम सत्य है, इसलिए इनको झूठी बात मन करके और इसकी अवहेला मत करें, भगवान का भजन करें। यह विषय बहुत गंभीर था, जीवों का क्या कर्तव्य है उसको सहस्त्र बताया, किंतु उसको धारण करना जरा गंभीर बात है, तो आपका दिमाग थक गया होगा, इसे कीर्तन करो तो मेरे तो किस धर्म जय जय राधा रमन हरि बोल। वृंदावन में आइए, यहां पर बतलाया सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को ये उपदेश देने लगे, भागवत की कथा कहने लगे, जिसको हमारे ब्रह्मचारी जी ने आप लोगों को देवहूति का और कपिल देव और देवहूति माता का संवाद सुना है। ये सुखदेव गोस्वामी जी के कौन थे, कैसे ये श्रीमद् भागवत का प्रकाश हुआ, थोड़ा सा इसके विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। श्री शुक षष्ठी विभक्ति में श्री शब्द का श्रिया होता है, श्रिया माने श्री के द्वारा, श्री के अतः श्रीमती राधिका जी श्री हैं, समस्त लक्ष्मियों की लक्ष्मी हैं, उनका सुख। ये सुखदेव गोस्वामी केवल तोते ही नहीं हैं, उनके बड़े प्यारे श्रीमती जी सुख को अपने हाथों में बैठा करके और उसे दाना चुंगाती, उसे दूध और चावल अन्न उसे खिलाती और अनार के बीजों को उनको खिलाती और उसे कहती बोलो तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ठीक राधा जी के स्वरों में, हूबहु उन्हीं का अनुकरण करता हुआ उन्हीं के स्वर में वो बोलता कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बड़े प्यार से उनको संभालती। किंतु एक दिन जाति के स्वभाव से उनके हाथों से उड़कर कहीं उड़ चला और पास ही में बरसाना के पास में नंदगांव है, दो अंगुल का अंतर है। ऐसे नंदगांव और बरसाना में करीब करीब 1.5-2 मील की दूरी होगी, किंतु दोनों की सीमा जुड़ी हुई है। पास ही में श्रीकृष्ण मध्वमंडल के साथ में एक कुंज में, तमाल कुंज में बैठे थे। वह सुख पृथ्वी उनके राधा जी के हाथों से उड़ करके और वहां पर पहुंचा और तमाल की एक सघन छाया में बैठकर वो इसी प्रकार से कहने लगा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण ने देखा कि राधा जी कहां से ये बोल रही, कहां है प्रिया जी, मेरी प्रिया जी कहां है। देखने लगी, देखा जी कहीं नहीं। फिर उन्होंने देखा एक सुख पक्षी सघन हरियाली में पेड़ों की छाया पत्तों में छिपा हुआ और वो बड़े दुख के साथ में कर रहा है, वो कह रहा है कृष्ण कृष्ण, और साथ ही साथ में ये भी कहने लगा, ओह मैं दुर्भागा, जाति से चंचल, ये सिया जी हमें अपने बाएं हाथे पर रख करके दाएं हाथ से बड़ी प्यार करती और मुझे दाना चुंगाती और कृष्ण कृष्ण ये बोलना सिखलाती और मैं उस समय में उनके स्वर में स्वर मिला करके बोलता था, आहा दुर्भागा, मैं नमक हरामी, मैं उनको छोड़कर के यहां पर कैसे चलाया था। और यही श्लोक बद्ध होकर के बड़े सुंदर रूप से राधा जी के स्वरों में ही वो गायन कर कृष्ण, अरे ये तो सुख पक्षी है और राधा जी के समान बोलता है, वो जरूर उन्हीं का सुख है। तो उसको बड़े प्यार से बुलाया, कृष्ण जी उसको बुलाए और न आया ऐसा कहीं हो सकता है, पशु पक्षी सबको आकर्षण करने वाले हैं, हिरण उसे हिरणी अपने पतियों को पीछे लेकर और कृष्ण से प्रणय की भिक्षा मांगती है, मयूर उनको देकर के नृत्य करने लगते हैं और बांसुरी की आवाज पर नृत्य करते हैं, कोयल रुकने लगती है, सारी प्रकृति एकदम विभोर हो जाती है, कृष्ण के रंग में रंग जाती है, आकाश में मेघ छा जाते हैं, ऊपर सुशीतल मानव बूंदें गिराने लगते हैं, बछड़े उनकी बंसी की ध्वनि सुनकर के एकदम चकित हो जाते हैं, मैया का दूध अभी गले में है वो नीचे ले जाते हैं ना ऊपर ले सकते, निकल नहीं पाते, बस कान को खड़ा करके सुनते हैं, गायें चरना भूल गई, घास उनके मुखों में ही रह गया और गायें जैसे कि तैसे चुपचाप कान को दोना बनाए हुए कृष्ण की बंसी रूपी अमृत ध्वनि का पान कर रही, भूल गई सब कुछ, भूल गई एक तक से आंखों से आंसू टपक रहे और कृष्ण भाव में तन रहे। ये कृष्ण ऐसे परम सुंदर है, एक बार यदि देख लिया जीवन में मन और कहीं नहीं जाएगा। तो ये सुख भला कृष्ण बुलाए और न जाए, बस बुलाते ही जैसे ऐसे किया और बस वो आकर के उनके हाथों पर कंधे पर बैठ गया, वो सुख बैठ गया। कहा जी एक बार फिर से कहो तो, क्या कह रहा था फिर से बोलो एक बार, प्रिया जी का नाम तो जो प्रिया जी ने सिखलाया वो बोलो तो राधा जी के स्वर में मधुर वाणी से, कृष्ण की तो मधुर वाणी है, उनकी मधुर वाणी है, किंतु राधा जी की मधुर वाणी सुनकर के कृष्ण अपने भी आत्मविस्मृत होते हैं, अपने को खो बैठते हैं, इतना उनका सुंदर मधुर स्वर। बस सुख ने जो ही कृष्ण 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 कहा, कृष्ण तन्मय हो कृष्ण, ओ मैं दुर्भागा, जाति से चंचल, उनके प्रिय हाथों से उड़ करके यहां पर कैसे आ गया, मेरा दुर्भाग्य। कृष्ण ने कहा जब तुम मेरे पास रहो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बस उसको वही खाना खिलाने लगे, वो अनार का खिलाने लगे और दही और अन्न उसको खिलाने लगे। इतने में दो सहेली आई राधा जी की, अरे कृष्ण ऐसा मत करो, ये सुख हमारी प्रिया जी का, उसका बिना तो एक मिनट नहीं रह सकती, जीवित नहीं रह सकती, तू लौटा दे, मैं इसको बांध कर रखा हूं, यदि तुम्हारी प्रिया जी का है और तुम्हारा है तो इसे ले जाओ, बुला लो तुम्हारे पास में चला जाए तो बस मैं मान लूंगा तुम्हारा है, ले जाओ। बहुत बुलाने की चेष्टा की, वो सुख नहीं गया। वो बोलेंगे से भला तुम्हारे यहाँ आकर के कोई लौट सकता है, यदि हाँ हमारी प्रिया ही आ गई तो झट एक क्षण में उसे बुला लेंगे, तो जाओ अपनी प्रिया जी को बुला लो, तुम्हारी प्रिया जी ऐसी नहीं है तैसी जो तुम्हारे पास में आए, आप उनके पास में जाओ, वो नहीं आएंगी तो सुख भी यदि ले जाना हो तो ले जाओ, ना तो मैं नहीं देता। और सुख को इस तरह से करने लगे, वो दोनों ललिता विशाखा जी वहाँ से लौट करके मैया के यहाँ गई यशोदा के यहाँ। मैया री, ये हमारी सखी का ये सुख जो है वो ले लिया है, ये कृष्ण के पास में आ गया, वो देता नहीं है और उसके बिना तो हमारी प्रिया जी रह नहीं सकती हैं, इसलिए आप किसी प्रकार से दिलवा दीजिए। अच्छा अच्छा ठहर जाओ, बैठ जाओ यहीं, अभी मैं लाता हूँ। ये करके वो मधुमंगल के साथ में, उस तोते के साथ में कृष्ण खेल रहे थे और उसे बार बार वही सब सुन रहे थे। यशोदा जी वहाँ झट गई और झपट करके उसको पकड़ लिया। दिन रात ऐसे पशुओं के साथ में खेलता रहेगा, बुद्धि नहीं, अकल नहीं, स्नान करने का समय हो गया और यहाँ पशुओं के साथ में खेलता, बस झट ले आई और उनको पकड़ करके हाथ और ये जाओ जल्दी से स्नान करो, नंद बाबा तुम्हारे भूखे बैठे हैं तुम्हारे लिए, और तुम पशुओं के साथ में ऐसा खेलता रहेगा। कृष्ण कुछ नहीं कर सके, कृष्ण ये हैं कौन? सुम प्रेम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जाइए समस्त भगवानों के भगवानों के भगवान के भी भगवान हैं, सब कारणों के कारण हैं, आदि राज गोविंद सर्व कारण कारण, जितने भी अवतार हैं सबके कारण हैं, समस्त विश्व के जो सृष्टि करने वाले हैं उनके भी मूल कारण के कारण हैं। वो प्रभु जी यशोदा जी के सामने हफ्ते बक्कर रह गए, उनकी अकल कोई काम नहीं आई, ऐसी मैया यशोदा जी हैं, और लेकर के उनको दे दिया, वो लेकर के चली गए। ये जो सुख है राधा जी का प्यारी प्यारा और कृष्ण का भी प्यारा है, जब कृष्ण की लीला पूरी समाप्त हो गई, द्वारका की लीला भी पूरी समाप्त हो गई, उस समय में कृष्ण इस सुख से बोले, देखो अब ये तुम यहीं पर हो, अब हम लोग अपनी लीला में जा रहे हैं गोलोक वृंदावन में, और तुम जगत में रह करके इस जो भागवत का उपदेश है, हमारा जो लीला चरित्र है, तुम जगत को देना, यही सूर्य के समान काम करेगा और पृथ्वी का यही रक्षा करेगा, इसलिए तुम्हारे ऊपर में हम छोड़ करके जाना चाहते हैं, जैसे रामचंद्र जी ने हनुमान के ऊपर में छोड़कर